बहुत सुंदर गीत सुना हमने, पवित्रता का हृदय कुंज में है पुष्प खिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, तो ऐसे सुख और शांति की अनुभूति कराने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद, उल्लासनगर, ब्रह्मा कुमारी के नक्शे में महाराष्ट्र झोन के अंतर्गत आते हैं, है ना? तो उसी महाराष्ट्र झोन के अंतर्गत आने वाले हमारे भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी नागपुर की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री प्राप्त की 73 में, और वो भी गोल्ड मेडल के साथ। एक वर्ष पूर्व ही उन्हें 1972 में ईश्वरीय ज्ञान भी मिल गया था, और जब अगले वर्ष गोल्ड मेडल मिला तो दृढ़ संकल्प किया अब ईश्वरीय पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है। तो बहुत ज्ञान और योग में गहरी रुचि के साथ आगे बढ़ते रहे और 76 में हेडक्वार्टर में आए, और तब से आपकी समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ हो गई। वर्तमान में आप तीनों कैंपस में, जो हमारे टोली किचन है जहां से आप सबको मुख मीठा कराया जाता है, जिस टोली से, वो टोली किचन आपके निर्देशन में चलते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो यूथ विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और चूंकि ज्ञान और योग में गहरी रुचि है तो बाबा का ज्ञान और योग की अनुभूतियां कराने के लिए देश विदेश में भ्रमण भी करते हैं। तो 90 से भी अधिक देशों में जा जाकर आपने बाबा का संदेश लोगों को दिया है, बाबा का बनाया है। न सिर्फ इतना, पत्रिकाओं में, रेडियो में, पत्रिकाओं में आर्टिकल्स, रेडियो में इंटरव्यू आदि भी देते रहते हैं। तो ऐसे अनुभवी आत्मा से हम सुनते हैं सुख शांति की जननी जो पवित्रता है, वो पवित्रता हमारे जीवन में किस हद तक है, उसको संपूर्ण रीति से लाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। आदरणीय भ्राता जी, और फिर 7 से 7:30 तक योग भी कराएंगे।
ओम शांति। सुख शांति की जननी पवित्रता। सतयुग त्रेता युग में हमारे जीवन में पवित्रता थी। परिणाम स्वरूप सुख शांति की बहुत अच्छी तरह से अनुभूति होती थी। लेकिन जैसे हमने द्वापर युग में प्रवेश किया, माया का प्रभाव हुआ, अपवित्रता जीवन में आने लगी, तो दुख और अशांति का अनुभव करने लगे, क्योंकि हमारा मूल ओरिजिनल नेचर पवित्रता है। तो इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की ही इस संसार में पूजा होती है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं की पूजा करते आए हैं। पवित्र आत्माओं से ही यह संसार रोशन रहता है, पवित्रता के आधार पर ही हमें भविष्य प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। जैसी पवित्रता वैसी पात्रता, भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए हमारी होती है। पवित्र आत्माओं पर परमात्म प्यार सदा बरसता रहता है। पवित्र आत्माओं को परमात्मा से विशेष स्पेशल गिफ्ट मिलती हैं। कौन सी? वॉइसलेस वायरलेस सेट की, जिसके आधार से पवित्र आत्माएं जब चाहे परमात्मा से डायरेक्ट बात करती हैं और परमात्मा भी उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो, इस संगम युग में मुझे बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करना ही है। पवित्रता के आधार पर ही आत्मा की क्वालिटी डिपेंड करती है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड पवित्रता के आधार पर ही होती है। पवित्र जो शब्द हैं, उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। चरित्र जो शब्द हैं, उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। जैसी पवित्रता हमारी आगे बढ़ती है, पवित्रता की सुगंध, पवित्रता की इत्र स्वतः ही इस वायुमंडल में फैलती रहती है, पवित्र संकल्पों के माध्यम से। इसलिए संगम युग में हर हालत में मुझे पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करना है, अनुभव करना है, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प हो। संगम युग में क्रिमिनल आय होना ये माया का अभिशाप है। कभी हमारी क्रिमिनल आय अगर होती है तो ईश्वरीय सुखों से हम बहुत दूर स्वयं को अनुभव करते हैं, सदा निराशा के और उदासी के शिकार बने रहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, फैमिलियरिटी का जो कीड़ा है हमें बहुत पीड़ा देता है। फैमिलियरिटी का कीड़ा अनेक प्रकार के माया के रोग हमें लगाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के तरफ आकर्षित होना ये भी अपवित्रता कहलाती है। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा यही है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरे बुद्धि में सदा एक बाबा रहे, कोई व्यक्ति और वैभव न रहे। मेरा किसी के तरफ आकर्षण नहीं है और किसी का मेरे तरफ भी आकर्षण नहीं है। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बार हम सोचते हैं, अगर हमारे मन में चलते चलते एखादा अपवित्र संकल्प चलता है तो हम सोचते हैं संकल्प ही तो चला ना। लेकिन उस एक संकल्प से भी हमें बड़ा भारी नुकसान होता है। चार प्रकार के नुकसान एक संकल्प अपवित्रता से होता है। पहला नुकसान है, पहले ही आत्मा कमजोर है, शक्तिशाली बनने के लिए हम योगाभ्यास करते हैं लेकिन अपवित्र संकल्प के माध्यम से आत्मा की बहुत ऊर्जा खर्च होती है, ये पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, अपवित्र संकल्प रूपी पत्थर उस आत्मा को हम मारते हैं, उसको चोट आती है, उसकी स्थिति नीचे आती है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। वो दूसरा नुकसान, उसकी स्थिति को मैंने नीचे गिराया। और तीसरा नुकसान, बाबा कहते हैं संगम युग में किसी के प्रति अपवित्र संकल्प चलना ये महा महा पाप है। ये सूक्ष्म पाप हमारे सिर के ऊपर बढ़ता जाता है और हम शिकायत करते हैं योग मेरे लिए कठिन है। चौथा नुकसान, एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो अपवित्र संकल्प रूपी पत्थर उस आत्मा पर टकराता है और पुनः वापस रिवर्स हमारे तरफ आता है। उसके कारण हमें डिस्टर्ब होता है जिससे योग के बहुत सुंदर गहन अनुभव करने से हम वंचित रहते हैं। तो चला एक ही संकल्प लेकिन इतना बड़ा भारी नुकसान हमें होता है और हम हमेशा शिकायत करते हैं पता नहीं मेरा योग क्यों नहीं लगता है, पता नहीं मुझे खुशी की अनुभूति क्यों नहीं रहती है। इतना ही नहीं, अगर हमारे मन में अपवित्र संकल्प चलता है तो केवल हमें उससे नुकसान नहीं होता है लेकिन हमारे साथ कई आत्माओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा है हरेक आत्मा की हरेक सितारे की अपनी दुनिया होती है। ये जड़ सितारा नहीं, आसमान का सितारा नहीं, लेकिन हम जो चैतन्य आत्माओं रूपी सितारे हैं उनकी अपनी अपनी दुनिया होती है। कौन सी दुनिया? जो भी आत्माएं सारे कल्प में हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, संबंध के रूप में, प्रजा के रूप में, भक्तों के रूप में, वो सारा हमारा संसार है, वो हमारी दुनिया है। हमारा एक अपवित्र संकल्प चलता है तो उनको हम एक कदम पीछे हटाते हैं और पवित्र संकल्प चलता है तो उनको हम आगे बढ़ने के लिए सहयोग देते हैं। इतना ही नहीं, हम कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं, सभी आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के जो पत्ते हैं, बाबा कहते हैं आपकी जिम्मेदारी है शुद्ध संकल्पों के द्वारा उनको शक्तिशाली खुराक खिलाना। अपवित्र संकल्प अगर हमारे मन में चलते हैं तो हम उनको शक्तिशाली नहीं खुराक खिलाते हैं, मिलावट की अशुद्ध खुराक खिलाते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ऐसी पवित्रता की स्थिति मुझे बनाना ही है, ये लक्ष्य हमारा हो। कई बार हम देखते हैं बाबा के नए नए बच्चे बाबा के पास आते हैं, कुछ समय बाबा के पास आते हैं चलते हैं लेकिन कभी कभी शिकायत करते हैं, पता नहीं जब से मैंने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कदम रखा तब से पता नहीं कैसे कैसे संकल्प मेरे मन में आते हैं, कभी नहीं आए थे
और ऐसे स्वप्न आते हैं जो जिंदगी में मुझे नहीं आए थे, ऐसे स्वप्न भी आ रहे हैं। मैं वहां जाना शुरू रखू या जाना छोड़ दो, दिल शिकस्त होता है उनका। क्यों ऐसे संकल्प आते हैं, क्यों ऐसे स्वप्न आते हैं, उसका कारण क्या है? हैं जी, कोई भी कड़ी बीमारी शारीरिक होती है, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये दवाई लो, सारी बीमारी बाहर आएगी, घबराना नहीं, धीरे 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 वो बीमारी खत्म हो जाएगी जड़ से। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। हमने यहां आकर कौन सी पैथी शुरू की है जी? राजयोगापैथी। राजयोगापैथी सुप्रीम डॉक्टर से शुरू की तो 63 जन्मों का जो भी अंदर कचरा है, जो गंदगी है, सारी बाहर आती है। अच्छी बात है, नहीं तो वो अंदर ही रहेगी। तो राजयोगापैथी ये है आत्मा की क्लींजिंग प्रोसेस, आत्मा को साफ करने की प्रोसेस। तो ऐसे संकल्प भी अगर चलते हैं तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, बड़े धैर्यता से उसका सामना करना है। और बाबा ने जो भी हमें विधियां बताई हैं, उस विधियों का हमें प्रयोग करते रहना है। संकल्प जो शब्द है, संकल्प कल्प शब्द उसमें अंतर्निहित है, अर्थात जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे इस कल्प की सिचुएशन होती है। जब हम आत्माओं के मन में बहुत शुद्ध और सतोपदान संकल्प चलते थे, उस समय ये सारा संसार भी सतोपदान था। जैसे हमारे मन में गिरावट आने लगी, इस कल्प में भी, इस संसार में भी गिरावट आने लगी। तो हम हीरो एक्टर हैं, इस सारे संसार को लीड करने वाले बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी बहुत सुंदर श्रेष्ठ स्थिति पवित्रता की बनाना है, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? संपूर्ण पवित्रता अर्थात केवल ब्रह्मचर्य पालन करना नहीं, लेकिन ब्रह्माचारी, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्माचारी भी हमें बनना है। जो ब्रह्मा बाबा के आचरण में ऐसी श्रेष्ठ धारणाएं थी, उन श्रेष्ठ धारणाओं को भी हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। केवल ब्रह्मचर्य की यहां बात नहीं है। तो सबसे पहली युक्ति, पवित्रता को धारण करने के लिए पहली युक्ति है अपवित्रता का जन्म देह अभिमान से होता है और पवित्रता का जन्म आत्म अभिमान से होता है। इसलिए हमें आत्मा का अनुभव बढ़ाना है और आत्मिक दृष्टि को मेंटेन करना है। मैं पवित्र आत्मा हूं और मेरे सामने जो भी व्यक्ति आती है उसको भी हमें पवित्र आत्मा के दृष्टि से देखना है, जिसको कहते हैं बाबा भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। चुंबक के में एक चैप्टर है, उसका प्रिंसिपल है सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। इक्वल पोल्स रिपल्स, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और ये भी ज्योति बिंदु आत्मा तो सजातीय ध्रुव हो गए, इक्वल पोल्स हो गए तो रिपल्सन हो जाएगा। तो हमारे मन में संकल्प अपवित्र चल नहीं सकते हैं। मैं 87 में ओम शांति भवन में 700 कुमारों का क्लास पवित्रता के टॉपिक पर कर रहा था। मैंने उनको ये प्रिंसिपल बताया तो जैसे क्लास पूरा हो गया उन्होंने गैलरी में, ओम शांति भवन की गैलरी में मुझे पकड़ा, ठहरो जाने नहीं, हमारा एक प्रश्न है। बोलो, आपने कहा है सजातीय ध्रुव जो है रिपल्स होते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। तो मैं भी आत्मा और बाबा भी आत्मा निराकार दोनों हो गए हैं, अगर रिपल्सन हो जाएगा तो हम तो बाबा को याद ही नहीं कर सकेंगे। इसका जवाब दो। मेरे पास जवाब नहीं था, मैंने सीधा बाबा से कनेक्शन जोड़ा, बाबा मुझे इंस्टेंट टचिंग दो। तो बाबा ने मुझे दो टचिंग तुरंत दे दिए। पहला टचिंग था जब आत्मा की कंपैरिजन आत्मा के साथ करते हैं तो भाई भाई कहलाते हैं, लेकिन जब आत्मा की कंपैरिजन परमात्मा से करते हैं तो कहते हैं आत्मा खाती है परमात्मा खाता है। टी फॉर फीमेल, ता फॉर मेल, तो ऑपोजिट हो गए हैं तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा। दूसरा टचिंग बाबा ने दिया कि बाबा निराकार राम हैं और हम आत्माएं सीताएं हैं, वो हमारा साजन है और हम सभी सजनियां हैं, तो ऑपोजिट होने से ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा। तो ये टचिंग जब उनके साथ शेयर किए वो खुश हो गए, आप जा सकते हैं। अच्छी तरह से बजाओ ना तालियां थोड़ा। ब्रह्मा बाबा ने भाई भाई की दृष्टि पक्की करके सारे संसार में नंबर वन पवित्रता की स्थिति प्राप्त की। सामने खड़े हैं बाबा शांति स्तंभ के रूप में। पवित्रता का स्तंभ अर्थात सारे संसार में टावर, सबसे ऊंची स्थिति। जितने भी धर्म पिता होकर गए किसी भी की भी इतनी ऊंची स्थिति नहीं थी। इसलिए बाबा को ग्रेट ग्रेट ज्ञान फादर भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति हमें अपनाना है, ऐसा लक्ष्य रखना है। दूसरी युक्ति, पवित्रता की स्थिति को मेंटेन करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे बुद्धि में सदा रहे। कौन सा? मेरा बाप शिव पवित्रता का सागर है, मेरी मां ब्रह्मा मां मास्टर पवित्रता के सागर है, मेरा जन्म ब्रह्मा मुख से हुआ है अर्थात पवित्रता से हुआ है। तो बच्चा कैसा होगा भाई? हैं जी, बाप पवित्रता का सागर, मां मास्टर पवित्रता के सागर, जन्म पवित्रता से, तो मैं हूं ही पवित्र आत्मा रूपी बच्चा। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो बहुत सरल रीति से पवित्रता की स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं? मैं अपवित्र आत्मा हूं, मुझे पवित्रता की स्थिति प्राप्त करना है। मैं अपवित्र आत्मा हूं, मुझे पवित्रता की स्थिति प्राप्त करना है। नहीं, मैं हूं ही पवित्र आत्मा, उससे पवित्रता की स्थिति सहज मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी युक्ति, बाबा कहते हैं पवित्रता का मैं वरदान आपको देता हूं। वरदान माना सहज प्राप्त हुआ वरदान चीज। उसके लिए हमें हर रोज अमृत वेले एक प्रयोग करना है। इतनी बढ़िया अनुभूति आपको होगी, आप सोचते ही रहोगे। क्या करना है, जैसी आंख खुलती है बाबा को गुड मॉर्निंग करना है अमृत वेले, और ऐसा अनुभव करना है शिव बाबा, निराकार शिव बाप ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में आकर हमारे सामने विराजमान है, मेरे सामने खड़े हैं, और मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, बहुत प्यारी बच्ची हूं, निराकार बाप मुझे, निराकारी तिलक, आत्मा का तिलक मेरे मस्तक पर खुद लगा रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव, सारे दिन भर में इसी स्थिति में रहो, वरदान दे रहे हैं, मैं बहुत प्यारी बच्ची हूं। उस निराकारी तिलक पर बाबा वी शेप का विजय का तिलक भी लगा रहे हैं, बच्चे विजयी भव, सारे दिन भर में माया दुश्मन के राज में रहते हुए भी सदा विजयी भव की स्थिति अनुभव करते रहो, मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, पवित्रता का सागर बाप मुझे आत्मा को बहुत सुंदर पवित्रता का ताज स्वयं पहना रहे हैं, स्वयं पवित्रता का सागर मुझे पवित्रता का ताज पहना रहे और वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे पवित्र भवा। तो मैं आत्मा डबल तिलकधारी और पवित्रता की ताजधारी हूं, ऐसी स्मृति सारे दिन भर में रहेगी तो कभी भी अशुद्ध संकल्प हमारे मन में आ नहीं सकते, ठीक है, ये वरदान के रूप में हमें अनुभव करना है। क्या हुआ, जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आया, मेरी उम्र 22 साल की थी, तो मेरे मन में थोड़े से कभी कभी अपवित्र संकल्प चलते थे, दिल बड़ा निराश होता था। मधुबन में आने के बाद भी कभी कभी ऐसे संकल्प चलते थे। एक दिन मैं ये सामने वाली पहाड़ी पर गया, आज मैंने फैसला करना है इस ब्रह्मा कुमार के लाइफ को आगे बढ़ाना है या पीछे लेना है, या उस पुरानी दुनिया में जाना है। बाबा से बात करता रहा, बाबा ने कहा बच्चे उस दुनिया में जाओगे तो माया ऐसी पिटाई करेगी, ऐसी लताड़ेगी, पुनः आपको वापस यहीं आना होगा, और वो दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए जो अपवित्रता का पॉइजन आत्मा में है उसको निकालने का पूरा प्रयास करो तो सदा विजयी बन के रहोगे, सदा उन्नति होगी। तो मैंने ठान लिया चाहे कैसा भी मुझे प्रयास करना पड़े इस अपवित्रता के पॉइजन को खत्म कर देना, और आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का बहुत अभ्यास किया। एकांत में बैठकर ट्रेनिंग सेक्शन के ऊपर मैं आत्मा का अभ्यास करता था, रात को 10 बजे के बाद अकेला बैठता था, एक घंटा दो घंटा चार घंटा बहुत अच्छा अभ्यास करता था, और किचन में जो भी व्यक्ति आता था मुझे उसके ब्रुकुटी में चमकता हुआ स्टार देखना है, आत्मा देखना है, इतना सुंदर अनुभव होता गया और पवित्रता की स्थिति आगे बढ़ती गई। हमारा लक्ष्य क्या है, निरंतर बाबा को याद करना। हम निरंतर बाबा को याद क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बाबा पवित्रता का सागर है और मैं आत्मा भी पवित्र बनती जाती हूं तो ऑटोमेटिक बाबा की तरफ आकर्षण होगा, कंबाइन होकर रहेंगे। लेकिन अपवित्रता की जो जंक है, रस्ट है आत्मा पर, वो हमें बाबा की तरफ आने नहीं देती है। इस रस्ट को हमें खत्म कर देना है, आत्मा रूपी सुई पर जो अपवित्रता का रस्ट है, जंक है, उसको हम खत्म करते हैं तो बाबा और मैं सदा कंबाइन अनुभव करती रहूंगी। ठीक है, दूसरी युक्ति, हम कई बार हर रोज ज्ञान का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, मुरली सुनते हैं और फिर दो चार साल पांच सात साल चलते हैं, फिर भी कभी कभी हमें थोड़ा सा रोब आता है, कभी कभी थोड़ी फीलिंग आती है। क्या बात है भाई, हर रोज योग स्नान ज्ञान स्नान कर रहे, परमात्मा की पालना ले रहे, फिर भी ये कमियां, फिर भी ये विकार के अंश मुज आत्मा में है। मुझ आत्मा पर जो भी दाग हैं, जो मेरी वैल्यू को घटा रहे हैं, किसी भी हालत में मुझे बेदाग हीरा बनकर घर जाना है। तो ये जो विकारों के अंश वंश रूपी दाग हैं, इनको हमने मिटाना है। उसके लिए आवश्यकता है ज्वालामुखी योगाभ्यास बढ़ाने की। ये साधारण योगाभ्यास से संभव नहीं है, बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है। अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा पर जो दाग हैं उसको हमें मिटाने हैं। दूसरी बात, सारे कल्प में अनेक आत्माओं को जो खजाने हैं वो भी हमें इकट्ठे करने हैं। और तीसरी बात, हमारे अपने संस्कारों को रॉयल और नोबल संस्कारों को मेंटेन करना है, पापों का बोझा उतारना है। ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब हमारा ज्वालामुखी योगाभ्यास बढ़ता जाएगा। तो सवेरे या शाम को जब बैठक का योग हम करते हैं, उस समय ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास मैंने बढ़ाना है। कोरोना काल में बाबा ने हमें बहुत गोल्डन चांस दिया है, जिन्होंने इस चांस का फायदा लिया है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी एक ही शिकायत बाबा के साथ रहती थी, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं, एकांतवासी बनकर बैठकर एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए मेरे पास उपलब्ध टाइम नहीं है। ये शिकायत हमारी खत्म हो गई। बाबा ने कहा लो टाइम जितना चाहिए, दो वर्ष कम होते है क्या? दूसरी युक्ति, पवित्रता की स्थिति को मेंटेन करने के लिए पवित्रता का जो सागर है बाबा, उसके पास हमें बैठना है और बाबा को देखते रहना है और बाबा के पवित्रता का रंग आत्मा पर लगाते जाना है। जैसा संग वैसा रंग, संगम अर्थात भगवान के संग में रहने का युग। तो उनके संग में रहते हैं तो ऑटोमेटिक उनका रंग आत्मा पर लगता जाएगा और हम भी मास्टर पवित्रता के सागर बनते जाएंगे। सतयुग में हर एक आत्मा को ताज होता है लाइट का, पवित्रता का नहीं, वैभव का। हर एक व्यक्ति को वैभव का ताज होता है, एक व्यक्ति भी बिना ताज वाला नहीं होता है। लेकिन वो वैभव का ताज का कनेक्शन संगम योगी पवित्रता के ताज से कनेक्टेड है। जिन आत्माओं को बहुत छोटा पवित्रता का ताज होता है उनको सतयुग में छोटा ताज वैभव का मिलता है, जिनका बहुत दिव्य और भव्य विशाल ताज होता है उनको बहुत विशाल वैभव का ताज, राजा महाराजा का ताज ऑटोमेटिक मिलता है। समझा? तो बाबा के संग में रहकर ऐसी पवित्रता की स्थिति मुझे बहुत अनुभव करना है। कई बार हम बाबा के पास बैठते हैं ना परमधाम में, बाबा के बाजू में। बाबा कहते मेरे साथ कंबाइन होके रहो, वो ऑफर कर रहे हैं बाबा कंपनी हमें। लेकिन कभी कभी बाबा के पास बाजू में परम धाम में बैठते हैं तो थोड़ा कभी कभी हम हिचकते हैं। बाबा तो पवित्रता का सागर है, मुझ आत्माओं पर तो काले धाब इंप्यूरिटी के है दब्बे हैं, पता नहीं मैं बाबा के समीप बैठ सकूंगी या नहीं, थोड़ा सा मन खाता है। तो जवाब मेरा ये है, प्रश्न मेरा ये है कि क्या हम परम धाम में बाबा के बाजू में बैठ सकते हैं, समीप बैठ सकते हैं? बोलो। हाँ जी, मन नहीं खाएगा, पक्की बात। बाबा पवित्रता का सागर है और मुझ आत्मा में ये अपवित्रता के दाग है, कचड़ा है, गंदगी है, विकारों की खाद है। तो थोड़ा आपके कपड़े मेले हैं, ट्रेवलिंग करके आई है और दादी बैठी है, दादी कहती आओ 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 सुनीता बहन, आओ 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 सुनीता बहन। नहीं दादी, मैं अभी ट्रेन से ट्रेवलिंग करके आया हूं, मैं बाद में मिलने आती हूं। थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो हमें बाबा के बाजू में परम धाम में बैठने का अधिकार है, उसके दो कारण है। पहला कारण, उसने मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप के गोदी में ही नहीं कंधे पर बैठने का अधिकार है, इसलिए बड़े ठाठ से उसके बाजू में बैठना है। तालियां तो बजाओ जरा। दूसरी बात, उसने मुझे सजनी के रूप में स्वीकार किया है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने उसका नहीं पकड़ा, पहले उसने मेरा पकड़ा है। पकड़ा है ना भाई? तो सजनी कैसी भी है, उसको अपने साजन के समीप बैठने का पूरा अधिकार होता है, इसलिए बड़े ठाठ से, बड़े मस्ती से, हिचकते बिना हमें बाबा के पास बैठना है और पवित्रता के रंग में रंगना है, होली मनाना है। ठीक है, अभी किसी न किसी तरह के युक्तियों को हमें अपनाना है, लेकिन ये प्रयोग पुरुषार्थ करते करते आत्मा में पवित्रता कहां तक आई है उसको अगर हमने चेक करना है तो कैसे चेक करें? 5 साल से 10 साल से 20 साल से हम चल रहे हैं, लेकिन मेरी पवित्रता की स्थिति कहां तक आगे बढ़ चुकी है और कितनी मैंने बढ़ानी है, ये कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मन में जो भी संकल्पों का पैटर्न चलता है, संकल्पों की जो चेन चलती है, उसको ऑब्जर्व करने से हमें पता चलता है मैं कहां खड़ी हूं आत्मा। अगर अभी भी मेरे मन में कभी कभी अपवित्र संकल्प चलते हैं, माना मैं द्वापर युग में ही खड़ी हूं। अपवित्र संकल्पों से मैंने मुक्ति प्राप्त की, अर्थात त्रेता युग में आप पहुंच गए हैं, रिटर्न। और हमेशा पवित्र संकल्पों का प्रवाह चल रहा है, श्रेष्ठ संकल्पों का प्रवाह चल रहा है, माना सतयुगी गोल्डन एजेड स्थिति के समीप आप पहुंच रहे हैं। मैं एक किसी के घर में मेहमान बन के गया था सेंटर पर। अब मैं जिस कमरे में रहता था उस कमरे में थोड़ी बांस आ रही थी। मैंने वो दीदी को बोला, दीदी यहां कुछ कमरे में बांस है। नहीं, कल ही तो हमारे भाइयों ने कमरा साफ किया। दीदी थोड़ा चेक करो। चेक किया तो कोने में सड़ा हुआ बैंगन का टुकड़ा मिला, उसके से बांस आ रही थी, मिला ना। तो ऐसे आत्मा में अगर विकारों की खाद है तो उससे ये अपवित्र संकल्प रूपी बदबू ऑटोमेटिक निकलती है। वो खत्म हो गई तो सारा समय आपके मन में पवित्रता की खुशबू हमेशा फैलती रहती। हम सभी रूहे गुलाब हैं, रूहानियत की खुशबू हमें फैलाना है, तो पवित्रता की इत्र को फैलाना है। ठीक है, दूसरी टेस्ट, स्वप्न के द्वारा हमें पता चलता है किस प्रकार की मेरी पवित्रता की स्थिति है, क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्धचेतन मन काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और हमारे पुराने जो संस्कार होते हैं उनका गहरा इंपैक्ट हमारे अर्धचेतन मन पर होता है। अगर अभी भी मुझे थोड़े से किसी ना किसी विकार से संबंधित स्वप्न आते हैं, अपवित्र संकल्प, डरावने संकल्प जो भी हैं, माना अभी भी वो विकार की खाद आत्मा में है। स्वप्न आना अच्छी बात है, लेकिन संगम युग के बारे में, बाप दादा के बारे में, सेवा के बारे में, सतयुग के बारे में ऐसे स्वप्न आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आत्मा की जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है वो अच्छी चल रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखो अभी बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसे यहां आए ना, बाबा के घर में कदम रखा, बच्चे मैंने आपको बड़ी जिम्मेदारी देना है। कौन सी? इस संसार में आपको पवित्र वाइब्रेशन फैलाने हैं, तत्वों को भी पावन करना है, और वायुमंडल को सतयुग के लायक पवित्र बनाना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। और वो आत्माएं कैसी कैसे संकल्प इस वायुमंडल में फैला रहे हैं, और मुट्ठी भर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया जिनकी स्थिति कभी अच्छी है कभी नहीं अच्छी है, उनको जिम्मेदारी दी है बाबा ने कि इस वायुमंडल को पवित्र बनाओ। क्या यह संभव होगा? हाँ जी बोलो ना, हाँ या ना? होगा, भगवान का साथ है तो जरूर होगा, और उन्होंने कहा है तो जरूर होगा, ये तो बात सत्य है। लेकिन एक बात हमने समझना है कि ये विकार अपवित्रता क्या चीज है और पवित्रता क्या चीज है, इस बात को थोड़ा क्लियर हमें समझना है। इस हॉल से अभी बिजली चली जाती है, हॉल में क्या होगा? क्या होगा? आपने बुलाया अंधेरा को, ऑटोमेटिक आया। क्यों आया? एब्सेंस ऑफ लाइट से अंधकार आ गया। तो अपवित्रता अंधकार है, पवित्रता प्रकाश है। पवित्रता का प्रकाश धीरे धीरे कम होने से ये विकार रूपी अपवित्रता आत्मा पर छा गई, और जैसे जैसे पवित्रता का प्रकाश बढ़ता है सारा अपवित्रता का अंधकार मिट जाता है। एक ही पूर्णिमा के दिन आसमान में चंद्रमा होता है, धरती पर सारा जो अंधकार होता है सारे अंधकार को मिटा देता है एक ही चंद्रमा। तो विकार कोई चीज नहीं है, ये किसी न किसी प्रकार के विशेष दिव्य गुण के लाइट का अभाव है। पांच विकार पांच दिव्य गुणों का अभाव है। काम विकार क्या चीज है? अपवित्रता के प्रकाश का अभाव है, काम का अंधकार। पवित्रता के उनको गुण को मुझे बढ़ाना है। दूसरा क्रोध, ये शीतलता का जो गुण है उसके कमी का ये क्रोध का अंधकार प्रमाण है। लोभ, संतुष्टता का जो दिव्य गुण है वो धीरे धीरे हम यूज करते हैं, जैसे हम त्रेता के अंत में जाते हैं वो डल होता है, तो लोभ का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। मोह, सबके साथ समान प्यार होना ये दिव्य गुण है, लेकिन किसी के साथ विशेष लगाव होना ये विकार है। तो हमें क्या करना है? सबके साथ समान प्यार होना, इस गुण को बढ़ाना है। अहंकार, इन नम्रता के दिव्य गुण का अभाव है अहंकार। कहने का भाव है एक तरफ योगाभ्यास हमको बढ़ाना है, इन विकारों के अंशों को समाप्त करना है, और दूसरी तरफ इन पांच दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने का प्रयास करते जाना है, तो तेजी से हम अपने संपूर्ण पवित्रता का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं, लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। कंप्यूटर एज है, अभी 1 in 1 करने का अब टाइम नहीं है, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 करने का समय। कर्म के साथ योग भी हो, कर्म के साथ सेवा भी हो, मनसा वाचा कर्मणा बाबा कहते हैं एक ही साथ हो, तो ऐसे डबल हमें पुरुषार्थ करना जरूरी है। ठीक है, अभी पवित्रता मेरी बढ़ रही है उसकी निशानियां क्या है, मेरे जीवन में उसकी निशानियां कौन सी दिखाई देगी। पहली निशानी, जैसे जैसे हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाती है हमारे चेहरे पर रूहानियत की चमक बढ़ती है। मैं एक दिन आबू रोड से अहमदाबाद जा रहा था, सुना दीदी, आबू रोड से अहमदाबाद जा रहा था, एसी का कोच था, मैं एक कंपार्टमेंट में बैठा था और दूसरे कंपार्टमेंट में दो तीन चार नॉन बीके बैठे थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे, ये बी की भाई बहने रंगीन कपड़े हैं, सफेद कपड़े की बात नहीं, रंगीन कपड़े हैं, कैसे परखे कि ये बी के है। मैं थोड़ा सा कान लगा के सुन रहा था क्या कर रहे थे। बी के की दो निशानियां है। अच्छा कौन से भाई, अगर बी के है तो उसके चेहरे पर चमक होगी पवित्रता की, रूहानियत की, वो बी के है, लोगों के चेहरे देखो उजड़े हुए चेहरे हैं। दूसरी निशानी, बीके अगर है तो उनके चेहरे पर खुशी होगी, तालियां भी नहीं बजा रहे, कमाल कर रहे हैं। अज्ञानी लोग भी इसको मान रहे हैं। एक स्लोगन लिखो, भगवान ने हमें इतना सुंदर चेहरा दिया है, चेहरा कितना भी सुंदर होगा उस पर अगर मुस्कुराहट नहीं होगी तो कोई चेहरा नहीं देखना चाहेगा। तो स्लोगन है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट हो, लक्ष्मी नारायण के चेहरे पर मुस्कुराहट है, हंसते नहीं वो लेकिन हर्षित मुक्ता मुस्कान मधुर उनके चेहरे पर है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान मिल गया, सुख मिल गया, लेकिन चेहरे पर मधुर मुस्कान हमेशा रहे उसके लिए आवश्यकता है मन हमारा सदा प्रसन्न रहे, क्योंकि फेस इज द मिरर ऑफ आवर माइंड। मन प्रसन्न है तो चेहरा प्रसन्न होगा, और मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए 3 चोर बार बार हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, चिंता, भय और बोझ, किसी को पटकने नहीं देना है। चिंतामणि बाप मिल गया, चिंता काहे की भाई, भय सर्वशक्तिवान बाप मिल गया, भय की चीज का, और बोझ सारा संसार का बोझ ढोने वाला बाप मेरा बन गया, मेरा बोझ नहीं ढोएगा। तीनों बातें खत्म हो गई और सदा प्रसन्न रहने लगे, और मन प्रसन्न तो चेहरा खिला हुआ है ना। कभी कभी क्या होता है, हम ट्रेवलिंग करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हमारे पहचान वाले नहीं है ना, तो हम थोड़ा सा ऐसा बैठते गुब्बारे की तरह चेहरा खत्म। अरे दाता के बच्चे हैं, कुछ तो दो, जेब से पैसा नहीं दो स्माइल तो दो, कमाल, इतनी कंजूसी कर रहे। स्माइल क्योंकि ये सारी संसार की आत्माएं हमारे से जुड़ी हुई है, चाहे वो बीके है चाहे नॉन बीके है, क्योंकि हम जड़ पर बैठे हैं कल्पवृक्ष के, ये सभी कनेक्टेड है हमारे से। इसलिए एक बार मिला है वो क्लब में दूसरी बार मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, और जो मेरे दर पर आता है खाली हाथ नहीं जा सकता है, मैं दाता का बच्चा हूं। तो मेरे चेहरे से खुशी मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, पवित्रता मिले, गंभीरता के भाव, कुछ न कुछ प्राप्ति हर एक को होती रहे, ठीक है। दूसरी निशानी, जैसे जैसे पवित्रता की स्थिति हमारी आगे बढ़ती जाती है, ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाती है। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, सबके प्रति प्रेम प्यार, यह है पवित्रता के निशाने। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे हमारी ग्लानी करता है, अपमान करता है, कोई बात नहीं, ईर्ष्या द्वेष समाप्त। और मान शान मुझे मिले कोई जरूरत नहीं, मान शान छोटी चीज लगती है, पवित्रता जब हमारी बहुत अच्छी होती है तो। भगवान ने मुझे मान दिया है, इतने बड़े बड़े टाइटल से नवाजा है, किसी आत्मा से मुझे मान मिले, मैं भिखारी नहीं हूं, कोई जरूरत नहीं मुझे। दूसरी निशानी, जैसे जैसे पवित्रता आगे बढ़ती है, वैसे वैसे संतुष्टता की अनुभूति बढ़ती जाती है। कोई इच्छा, कोई कामना नहीं रहती है। काम विकार को जीतते हैं तो काम ना, कोई कामना नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती है, संतुष्ट आत्मा अनुभव करते हैं, ठीक है। दूसरी निशानी है, जैसे जैसे पवित्रता हमारी आगे बढ़ती है, ईश्वरीय खुशी और ईश्वरीय नशा हमारा नेचुरल स्वभाव बनता है। उसके लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है। ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी नेचुरल होती है, ठीक है ना। तो और जैसी जैसी पवित्रता बढ़ती है ना, वैसी वैसी खुशी बढ़ती है। एक मक्खी आती है ना घर में बैठे गुंग 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 कर रही, इधर से एक मक्खी तंग करती है, बैठने नहीं देती है। ऐसी अपवित्र संकल्प रूपी मक्खी अगर आत्मा पर बैठती है तो आत्मा को भी परेशान करती है। तो अपवित्र संकल्प मेरे मन में नहीं चल सकते हैं। मैं आत्मा एक चैतन्य अगरबत्ती हूं, मोजच आत्मा रूपी चैतन्य अगरबत्ती से पवित्रता की सुगंध इस वायुमंडल में सदा फैलती रहती है। ऐसी अनुभूति हमने करना है। जो भी बदबू है अपवित्र संकल्प रूपी इस वायुमंडल में, उसको मिटाने वाली मैं चैतन्य अगरबत्ती हूं, ठीक है। तो हमें विशेष ध्यान देना है भोजन पर, अपने जैसा अन्न वैसा मन। भोजन हमें पवित्र भोजन ही करना है। जिनकी स्थिति अच्छी है उनके हाथ का ही भोजन हमें स्वीकार करना है। इस पर थोड़ा ध्यान भी देना जरूरी है। और बाबा ने कहा है पवित्रता की जो श्रेष्ठ स्थिति है वो सेवा के लिए श्रेष्ठ साधन है। और गृहस्थ में रहने वाले, गृहस्थ में जो रहने वाले हैं ना, वो एक युक्ति को अपनाएं, ब्रह्मा बाबा मेरे लिए रोल मॉडल है। ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी थे, चार पांच बच्चे बाबा को भी थे इस जन्म में, लेकिन बाबा ने इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त की जो कोई दुनिया में नहीं कर सका। वो मेरा बाप है, किसी और का नहीं, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी टाइटल मुझे मिला है, मेरा वो बाप है। अगर मेरा बाप ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूं। गृहस्थ में रहने वाले ऐसा सकारात्मक सोचे तो बहुत सरल रीति से ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अभी हम चले बहुत सुंदर योग का अनुभव करेंगे, इस दुनिया से एकदम उड़ जाएंगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा कॉपी पेन हटा के 2 मिनट तालियां बजाओ जरा।
खुद को शाबाश की दो, कोई दे न दे अपने को तो दो।
चलो हम शांति हैं, सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी मकान में
साइलेंस रखे ना मां, है ना साइलेंस।
इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। मोजा निराकार ज्योति बिंदु आत्मा को पवित्रता के सागर परमात्मा ने बहुत सुंदर दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज पहनाया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं। पवित्रता का इत्र महज पवित्र आत्मा से चारों ओर फैल रहा है। परम सुख की परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं निराकार ज्योति बिंदु पवित्र आत्मा इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी पुष्पक
विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकली हूं। इस विश्व के गोले से पार, चंद्र, सूर्य, तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मौसम निराकार ज्योति बिंदु पवित्र आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों की शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं, झूलता ही जा रहा हूं। झूलते झूलते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रहे हैं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सुखिला दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल
5000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जो भक्ति मार्ग में गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा निभाने मैं आया हूं। जब जाओ, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरे गोदी में खेलो, मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। लाडले बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं निराकार भगवान साकार रूप में आकर मुझे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर मुरली द्वारा मुझ आत्मा को मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। मुझे अपने टीचर पर नाज है। मीठे बच्चे, कभी मुझे परम सदगुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो, वरदानी मूरत बनते रहो। लाडले बच्चे, कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठो, अपने दिल के समाचार की लेन देन मेरे साथ करके स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ चलो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु पवित्र आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई। कितनी सुंदर न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। स्वीट साइलेंस हो। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण नाथ, मेरे प्राण प्यारे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मज आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। पवित्रता के सागर परम सुंदर बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम, बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तक दबा, अपने अपनी शीतल गोद में बिठा दिया बाबा, मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। बाबा मेरे सलोने शिव साजने, मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन को देख रही हूं। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्म सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूं, अति समीप पहुंच गई हूं, और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं, मुझे कुछ पता नहीं मैं कहां हूं, अपने अस्तित्व को खो चुकी हूं, कंबाइंड हो चुकी हूं, शिव मैं बन चुकी हूं, खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मेरे सलोने शिव साजन ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य शिव से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म सजनी पर हो रही है, होती जा रही है। मैं आत्मा सजनी ज्ञान सूर्य शिव साजन से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म होते जा रहे हैं, बस मौते ही जा रहे हैं। मैं आत्मा सजनी एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति महाज्योति शिव पिता से महामिलन मंगल मिलन मना रहे हो। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है, उनकी कंपनी का मैं आत्मा भरपूर आनंद ले रही हूं, लेती जा रही हूं। शक्तियों की सकाश मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों की किरणें, शक्तियों की सकाश पड़ रही है। अनेक आत्माएं सुकून अनुभव कर रही है। रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति खोई रहूं, समाई रहूं, लीन होकर रहूं। वारे में वाह मेरे पापा, वाह मेरा भाग्य, सचमुच मेरे जीवन के सबसे सुनहरे सबसे खुशनुमा पल है यह, गोल्डन मोमेंट्स है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापी स्वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं, और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मास्टर पवित्रता के सागर सम्मान के सिंहासन पर प्रकृति के अकाल तख्त पर सम्मान के सिंहासन पर विराजमान होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहे हो। मैं आत्मा राजा पवित्रता का ताजधारी हूं, पवित्रता की सजीव तरंगे मोस आत्मा राजा से इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। पवित्रता के सागर परमात्मा से पवित्र किरणों का फाउंटेन मोज पवित्र आत्मा पर निरंतर पड़ रहा है। मैं आत्मा पवित्र संकल्प के फाउंटेन की किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूं। शीतलता की आनंद की परम सुख की अनुभूति हो रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक, पवित्रता की चमक चारों ओर फैल रही है, फैलती जा रही है। ओम शांति।
तो पूरे डेढ़ घंटे तक भ्राता जी के सानिध्य में बैठकर ज्ञान और योग की आप सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की न? तो भ्राता जी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।